عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة إلى الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورہ عبسہ کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں، خلاص تفسیر مکمل ہو گیا. معرفہ مسائل پڑھ رہے تھے پیج نمبر 674 کے اوپر، جو آخری ٹاپک ہم نے سیکنڈ پیراگراف میں پڑھا تھا وہ یہ کہ یزکا اور یزکرا، یہ دو الگ الگ الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے. ایک جو ہے وہ کامل تزکیے کے معنی دیتا ہے اور دوسرا نصیحت قبول کرنے کے معنی دیتا ہے. اور جو نصیحت قبول کر لیتا ہے تو آج نہیں تو کل اس کا تزکیہ بھی ہو جاتا ہے. تو اس کے تحت ہم نے ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ آپ کے سامنے بیان کیا تھا پچھلے ہفتے، یعنی پچھلی کلاس میں، کہ نصیحت کا قصور نہیں ہوتا کہ وہ قبول نہیں ہو رہی. یعنی جب بھی کوئی اچھی بات کسی کے ساتھ کی جاتی ہے، قرآن سے کی جا رہی ہو، حدیث سے کی جا رہی ہو، اچھے واقعات بیان کیے جا رہے ہوں، یا ویسے ہی نیکی کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہو، جنت کا شوق دلانے کی کوشش کی جا رہی ہو، جہنم کا خوف دلانے کی کوشش کی جا رہی ہو، واقعات سنائے جا رہے ہوں، تو قصور ان نصیحت کی باتوں کا نہیں ہوتا کیونکہ یہ فائدہ دیتی ہیں. تو پھر اگلے بندے کو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی زیرو فائدہ. تھوڑا فائدہ کی نفی نہیں کر رہے، تھوڑا فائدہ تو ہو رہا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا. تو وہ جو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا تو ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ نصیحت میں کوئی فالٹ ہے، رائٹ، نصیحت میں کوئی فالٹ ہے، یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں، ٹھیک ہے نا، ان باتوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، صرف تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا، رائٹ، اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. کتابیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا، رائٹ، اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں اگلے بندے کے اوپر کوئی امپیکٹ نظر نہیں آ رہا ہوتا، بلکہ الٹا نیگیٹو امپیکٹ نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ الٹا مخالف ہو رہا ہوتا ہے، الٹا تنقید کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیڑے نکال رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو ایسے ہی ہیں، یہ تو ایسے ہی ہیں. تو ریزن کیا ہوتا ہے؟ ریزن یہ ہوتا ہے کیونکہ اگرچہ کہ وہ مسلمان ہوتا ہے، یعنی اس کی عقل کا والف کھلا ہوا ہوتا ہے ایمان کی وجہ سے، لیکن اس کے اندر بدگمانی کا کچرا پھنسا ہوا ہوتا ہے، کلاگ ہوا ہوا ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے. تو جب تک وہ کلاگ رہے گا اس وقت تک نصیحت کی بات اس کے پائپ لائن سے گزرے گی نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ کلاگنگ کا ہوتا ہے، بدگمانی کا مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس شخص کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا. فضائل اعمال پڑھے ہوتے ہیں، فضائل اعمال کے اوپر تنقید کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کر کے، ٹھیک ہے، کہ اس کے اندر تو ضعیف حدیثیں ہیں، اس میں تو موضوع حدیثیں ہیں، اور یہ مولوی صاحب جو ہے ایسی باتیں کر رہے ہیں اور ان کو نہیں، کیا فائدہ ایسی باتوں کا، ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے دل میں علماء کرام کے بارے میں، ضعیف حدیثوں کے بارے میں بدگمانی کا کچرا پھنسا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایسے شخص کو اس وجہ سے فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا. فضائل اعمال میں کوئی خرابی نہیں ہے، ضعیف حدیثوں کی وجہ سے کوئی خرابی نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. تو مسئلہ اس بندے کا ہوتا ہے. اب ایسا بندہ جو ہوتا ہے نا، تو وہ اصل میں ماننے والا بندہ ہوتا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان کیا ہے قرآن کے اندر، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، تو مؤمنین کا ایک ترجمہ ہمارے مشائخ نے باقاعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے کہ جی نہیں ایمان والے کو مؤمنین کہتے ہیں، مؤمنین کا مطلب ہوتا ہے ایمان والا، تو ایمان والا تو یہ ہے، ٹھیک ہے، ایمان والا تو یہ ہے کہ یہ بیسک عقائد کو مانتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن صرف بیسک عقائد کے اندر کچھ تفصیلات بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ان تفصیلات کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، ان کی انگریڈینٹس کو نہیں مانتا جو کہ اسینشیل ہوتی ہیں ماننے کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی جو ہے نا پھر نہ ماننے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے نا اس کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا. تو قرآن کا اصول غلط نہیں ہے، قرآن کا اعلان غلط نہیں ہے، غلطی جو ہوتی ہے وہ اس بندے میں ہوتی ہے. تو اس وجہ سے پھر ایسے بندے کے ساتھ جو ہے وہ عقلی جنگ لڑنی پڑتی ہے تھوڑی سی، ठीक है ना, अकली काम करना पड़ता है ताकि इसके अकल के पाइपलाइन के अंदर जो क्लॉगिंग हुई हुई है, इस क्लॉगिंग को दूर किया जाए। ठीक है, ये क्लॉगिंग जो है वो दूर हो सकती है, ये कोई यानी इम्पॉसिबल चीज नहीं होती है। ठीक है, ये दूर हो सकती है, बस इसके लिए उस बंदे को थोड़ा सा यानी मुतवज्जे होना पड़ता है। ठीक है, अगर वो जिद पर उतरा हुआ हो, जिद पर उतरा हुआ हो, तो क्लॉगिंग भी दूर नहीं कर सकते आप। ठीक है, कि उसने बस नहीं मानी, उसने ठान लिया कि मैंने तो सुननी ही नहीं है, तो फिर आप ये क्लॉगिंग हरगिज दूर नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर वो सुनने के लिए तैयार हो ना, तो दलाइल की कमी नहीं है, दलाइल की कोई कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने अपने दीन के अंदर ऐसे ऐसे उलमा रखे हैं, ऐसे ऐसे दलाइल रखे हैं कि कोई चीज उनके सामने ठहर नहीं सकती सिवाय इंसान की अनानियत के। ठीक है, अनानियत और जिद को कोई चीज नहीं तोड़ सकती। ठीक है, बाकी जो भी कंफ्यूजन्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, या कम फहमी है, या कम इल्मी है, या गलत फहमी है, ये सारी चीजें रिमूव हो जाती हैं। ठीक है, जिद और अनानियत नहीं रिमूव हो सकती, इसलिए कि जिद और अनानियत जो होती है ना, ये बहुत बुरी सिफत होती है, और ये चीज जो होती है खुदाई, इसके लिए दूसरा लफ्ज इस्तेमाल होता है। अनानियत के लिए दूसरा लफ्ज क्या होता है? खुदाई। ठीक है, तो जो शख्स अपने आप को खुदा के जैसा बनाने की कोशिश करे, यानी अनानियत, यानी अपनी परस्तिश करता हो, अनानियत का मतलब क्या? अपनी परस्तिश करता है। ठीक है, तो वो तो अपने आप को खुदा ही समझ रहा है ना, जब भी तो अपनी परस्तिश करता है। ठीक है, परस्तिश तो खुदा की जाती है, तो अपनी परस्तिश कर रहा है वो, तो ऐसे शख्स के साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना, वक्त का नबी भी उसको हिदायत पे नहीं लेके आ सकता, तो फिर हमारी क्या हैसियत, हमारी क्या मजाल इसके अंदर। ठीक है, लेकिन हमारा काम है कोशिश करना, बाकी हो सकता है उसकी अनानियत अल्लाह ताला तोड़ दे, कल को उसको ऐसे जूते लगाएं, ऐसे जूते लगाएं कि उसकी सारी की सारी अनानियत अनानियत जो है वो खाक में मिल जाए, हमें तो नहीं पता ना। तो ये तो उसका और अल्लाह के दरमियान का मामला है, तो इस वजह से हमें दुआ करते रहनी चाहिए और अपनी कोशिश करते रहनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। तबलीग और तालीम के लिए एक अहम उसूल है कुरानी। इस मौके में ये तो जाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो काम बयक वक्त आ गए थे, दोनों काम अच्छे काम थे। ठीक है ना, देखें दोनों काम में कोई एक नाजायज काम नहीं था, दोनों ही जायज काम थे और अच्छे काम थे। एक मुसलमान को तालीम और उसकी तकमील और दिलजोई, यानी नाबीना सहाबी अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मकतूम की तकमील, तालीम, दिलजोई, दूसरे गैर मुस्लिमों की हिदायत के लिए उनकी तरफ तवज्जो। ठीक है ना, दोनों जायज और दोनों बहुत एहसन काम। तो अब यहां पर क्या चीज है, देखें कुरान हमें प्रायोरिटाइजेशन सिखा रहा है। ठीक है ना, प्रायोरिटाइजेशन जो कि आजकल जो है वो मैनेजमेंट कोर्सेज लेने के बाद इंसान को पता लगती है कि ये भी कोई चीज होती है। ठीक है, दो कामों के अंदर प्रायोरिटाइज करना, तो कुरान करीम के इस इरशाद ने वाजह कर दिया कि पहला काम दूसरे काम पर मुकद्दम है, प्रायोरिटीज सेट कर दी। ठीक है, दूसरे काम की वजह से पहले काम में ताखीर करना या कोई खलल डालना दुरुस्त नहीं है। इससे मालूम हुआ कि मुसलमानों की तालीम और उनकी इस्लाह की फिक्र गैर मुस्लिमों को इस्लाम में दाखिल करने की फिक्र से अहम और मुकद्दम है। ठीक है, तो ये एक एक जनरल गाइडलाइन हमें कुरान से मिल गई। ठीक है, लेकिन जैसे कि आपको पहले भी समझाया है और अभी फिर समझा रहा हूं कि ये चीज जो है वो कांस्टेंट नहीं होती। अल्लाह ताला ने एक गाइडलाइन तो दे दी, ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन को भी हमें समझने की जरूरत है कि ये सिचुएशन क्या थी। ठीक है, तो सिचुएशंस जो होती हैं वो हमेशा एक नहीं रहती, कुरान हमें हर सिचुएशन नहीं बताता। ठीक है ना, एवरी पॉसिबल सिचुएशन दैट कैन अकर इन योर लाइफ, इन माई लाइफ, कुरान में वो सारी सिचुएशंस नहीं है। कुछ लोग जो माशाल्लाह मैनेजमेंट की पोजीशंस पर हैं या काम करते हैं इस सिस्टम का, तो वो जानते हैं केसेस होते हैं, यूज केसेस, राइट। हमारे माशाल्लाह जो आईटी के भाई हैं, बराबर में आज बैठे हुए साउद भाई, तो बताते हैं यूज केसेस होते हैं, केसेस होते हैं, केसेस में बताया जाता है कि भाई ये इस सिचुएशन में ये एग्जाम्पल होगी, इस सिचुएशन में ये एग्जाम्पल होगी, इसमें आप ऐसे अप्लाई करेंगे, इसमें आप ऐसे अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो यूज केसेस डिफरेंट होते हैं। सारे दुनिया के यूज केसेस कोई भी नहीं डॉक्यूमेंट कर सकता, किसी मैनुअल के अंदर, किसी किताब के अंदर सारी दुनिया के यूज केसेस नहीं आ सकते, वो ज्यादा से ज्यादा चंद एक यूज केसेस बता देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कुरान करीम के अंदर एक यूज केस बताया गया है, اور ایک یوز کیس کے ذریعے سے اصول بتا دیا گیا. اب اس اصول کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ تو ہر کیس کے مطابق ڈفرنٹ ہوگی, ٹھیک ہے. اس وجہ سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یوز کیسز نہیں ہوتے ہیں, سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس کو کہ ٹیچر ریلیشن شپ کہتے ہیں, اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ, ٹھیک ہے. اگر ٹیچر کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا, ایکسپرٹ کے ساتھ جو کہ کہتے ہیں نا گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, جس نے کہ اپنی زندگی جو ہے وہ تجربات کے ساتھ گزاری ہوتی ہے, دھوپ میں کھڑے ہو کر کے بال نہیں سفید کیے ہوتے بلکہ تجربے میں اس کے بال سفید ہوئے ہوتے ہیں, عمر لگائی ہوتی ہے اس نے, تو اس کو ایک ایسی اللہ تعالی کی طرف سے انڈرسٹینڈنگ مل جاتی ہے, فہم مل جاتی ہے تجربے کی وجہ سے, کہ اب وہ جو بھی یوز کیس آپ کی زندگی میں آئے گا نا آپ کو صحیح گائیڈ لائن کر دے گا. تو یہ ماڈل جو ہے نا یہ سب سے اہم ماڈل ہے, اور یہاں پر یہی ماڈل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ ہیں یہاں پر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرید ہیں یہاں پر, ٹھیک ہے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہوتے ہیں ان کا دنیا میں کوئی شیخ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, ان کا شیخ ہوتا ہے, اوپر کی کرسی خالی نہیں ہوتی, شیخ کی کرسی خالی نہیں ہوتی نبی کی, ٹھیک ہے نا, اس کرسی کے اوپر اللہ تعالیٰ موجود ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک کیس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کر رہے ہیں, اور ایک ہمیں ماڈل دے دیا کہ دیکھو تمہارے اوپر بھی کوئی ہونا چاہیے جو کہ تمہیں گائیڈ کرے, ٹھیک ہے. تو اس کیس کے اندر پہ اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کر دیا کہ پہلا کام جو ہے وہ دوسرے کام کے اوپر مقدم ہے. کسی کیس میں ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی ہو, کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے جو یعنی کوئی مسلمان آپ کے پاس آ رہا ہے لیکن اس مسلمان کے ویسے حالات نہیں ہیں جیسے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے, ٹھیک ہے نا, وہ کسی اور کام سے آ رہا ہے. اس کیس کے اندر ہو سکتا ہے غیر مسلم کو پرائیورٹی دینی بھی پڑ جائے, ڈپینڈ کرتا ہے نا کیا 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 سچویشن ہیں, ٹھیک. تو ایک کیس کے اندر اللہ تعالیٰ نے گائیڈ لائن دے دی, باقی کیسز جو ہیں وہ اوپن چھوڑ دیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جا بجا ایسے معاملات کیے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ایک سچویشن بتا دیتے ہیں باقی سچویشن جو ہے وہ آپ کے علماء کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مثال جو علماء بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بتا دیا کہ تم گھوڑے تیار کرو, ٹھیک ہے, اب گھوڑے تیار کرو اور اس کی علت بتا دی کہ تاکہ تمہارے دشمنوں کے اوپر تمہارا روب رہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ گھوڑے تیار کرنا ایک کیس بتا دیا جو کہ اس زمانے میں اپلائی ہوتا تھا. آج کے زمانے کے اندر قرآن کی اس آیت کو اپلائی کر کے دکھائیں ذرا, کوئی دشمن آپ کا ڈرے گا آپ سے؟ آپ نے جی 1 کروڑ گھوڑے پال لیے جنگی گھوڑے, ٹھیک ہے نا, آپ کا دشمن آپ سے باروب ہو جائے گا؟ ہرگز روب میں نہیں آئے گا, ٹھیک ہے نا. تو بھائی آپ کہیں کہ یار میں نے کیا, میں تو اللہ کے حکم کو فالو کر رہا ہوں, میں نے تو قرآن کو فالو کیا ہے, میں نے تو گھوڑے پالے, ٹھیک ہے, اب دشمنوں کے دل میں روب کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہو گیا بھائی کہ بھئی ایک نئی مصیبت آ گئی, دشمن کے دل میں روب پیدا نہیں ہو رہا, میں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو فالو کر رہا ہوں, میں تو قرآن معظم کے حکم کو فالو کر رہا ہوں اور دشمن کے اس میں روب بھی پیدا نہیں ہو رہا, یہ کیا مصیبت آ گئی ایک نئی, ٹھیک ہے نا. تو بھئی کیا اس کا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک آپ کو کیس بتایا ہے, ٹھیک ہے, اب علماء کے اوپر چھوڑ دیا کہ وہ ہر دور ہر زمانے کے مطابق اس علت کو فالو کریں اور اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ جنگی سامان تیار کریں. اب آج کے دور میں جو جن چیزوں سے روب پیدا ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں, تو اس کے لیے علماء کون ہوں گے؟ کوئی مولانا صاحب آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کیا ہتھیار تیار کرنے چاہیے, کوئی مفتی صاحب بتائیں گے, کوئی شیخ الحدیث صاحب بتائیں گے, وہ نہیں بتا سکتے یہ بات. تو یہ کون سے والے عالم کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جنگی اسلحے میں جو علم رکھتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے, فوج کے جرنیل کی بات ہو رہی ہے, جو ڈیفنس اسٹریٹجسٹ ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ یہاں کا عالم ہے, اس پوائنٹ کا عالم, ٹھیک ہے. تو ہر زمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے, ہر دور ہر زمانے کے لیے اور ہر سچویشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ماڈل دے دیا, علماء اور علماء کے شاگردوں والا ماڈل, ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ والا ماڈل, ٹھیک ہے. تو اس ماڈل سے ہم کبھی بھی اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے. یہ ماڈل دیکھیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اصلاح ہو رہی ہے نا, تو کوئی اصلاح کرنے والا تھا تب اصلاح ہو رہی ہے نا. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوپر سے تعلق نہ جوڑتے, ٹھیک ہے, یہ اصلاحی تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اوپر سے نہ جوڑا ہوتا تو پھر اصلاح ہو سکتی تھی؟ نہیں ہو سکتی تھی, ٹھیک ہے نا, بالکل نہیں ہو سکتی تھی. بالکل اسی طریقے سے ہمارا بھی یہ معاملہ ہے کہ اگر ہم اوپر سے اپنے کسی شیخ کے ساتھ اصلاحی تعلق نہیں بنا کر کے رکھیں گے, ٹھیک ہے, تو ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی. تو فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی تعلیم اور ان کی اصلاح کی فکر غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کی فکر سے اہم اور مقدم ہے. इसमें उन उलमा के लिए एक और एक अहम हिदायत है जो गैर मुस्लिमों के शुबहात के इजाले और उनको इस्लाम से मानूस करने की खातिर बाज ऐसे काम कर बैठते हैं जिनसे आम मुसलमानों के दिलों में शकूक व शुबहात या शिकायत पैदा हो जाती हैं। उनको इस कुरानी हिदायत के मुताबिक मुसलमानों की हिफाजत और इस्लाह हाल को मुकद्दम रखना चाहिए। अकबर महरूम ने खूब फरमाया था, अकबर इला आबादी की बात हो रही है, कि बेवफा समझें तुम्हें अहले हरम, इससे बचो, देर वाले कुछ अदा कह दें ये बदनामी भली। ठीक है, यानी गैर मुस्लिमों को खुश करने के लिए तुम दीन को कॉम्प्रोमाइज करना ना शुरू हो जाओ, ये कहना चाह रहे हैं हजरत यहाँ पर। ठीक है, गैर मुस्लिमों को खुश करने के लिए कि जी वो जो है ना वो यानी हमारे दीन के बारे में अच्छा ओपिनियन रखें, तो इसकी वजह से तुम दीन को कॉम्प्रोमाइज करके ऐसी हरकतें करना ना शुरू कर दो कि दीन वाले ही तुम्हारे बारे में जो है परेशान हो जाए कि ये क्या, इस शख्स ने क्या करना शुरू कर दिया, किस किस्म के काम करने शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये एक मसला है, बहुत गहरा मसला है हमारे साथ। ठीक है, बहुत बड़ा मसला है कि हम जो है ना वो नॉन मुस्लिम्स यानी बाहर के लोगों को दावत देने के लिए अपने दीन को कॉम्प्रोमाइज, यानी हमारी बातें इस घूमती हैं इस पॉइंट के गिर्द के काफिर क्या कहेंगे, ईसाई क्या कहेंगे अगर हमने ऐसे काम कर लिया। ठीक है, नॉन मुस्लिम्स क्या कहेंगे अगर हमने ऐसे काम कर लिया। ठीक है भाई, हमें इसकी फिक्र होनी चाहिए कि अल्लाह क्या कहेगा अगर हमने ऐसे काम कर लिया, रसूल क्या कहेंगे अगर हमने ऐसे काम कर लिया। ठीक है, बजाय इसके कि हम दूसरों की हर वक्त फिक्र करते रहें कि जी वो क्या कहेंगे, तो उनको दावत देना हमारे लिए इतना अहम नहीं होना चाहिए कि हम अपने दीन को कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दें। जैसे कि औरतें पर्दा नहीं करती कि पर्दा करेंगे तो जी वो जो नॉन मुस्लिम औरत है ना तो वो दूर भाग जाएगी, वो परेशान हो जाएगी। अल्लाह की बंदी, तुम्हें अल्लाह ताला ने इस फर्ज लगाया है पर्दा करना। ठीक है, तो तुम्हें अल्लाह के की तरफ से जो फर्ज उसकी फिक्र नहीं है, तुम्हें उस दूसरे बंदे की फिक्र है कि वो दूर ना भाग जाए। तुम्हें किसने इसकी जिम्मेदारी दी है कि वो दूर भागे करीब भागे। ठीक है, ये तो ऐसे ही हो गया ना कि आपने वो काम अपने जिम्मे ले लिया जो आपके जिम्मे नहीं था, और जो था उसको जो है वो आपने साइड पे कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से लोग जो है वो बहुत इस तरह की बातें करते हैं, तो ऐसी बातें क्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, करनी चाहिए। ये गलत है कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, अगले बंदे की नॉन मुस्लिम्स की फिक्र करनी चाहिए, लेकिन कैसे करेंगे। पर्दा तो नहीं छोड़ सकते, ये तो फराइज में से है। ठीक है, लेकिन कुछ हर चीज फर्ज तो नहीं होती ना दीन के अंदर, कुछ चीजें मुस्तहबात भी तो होती है ना, कुछ चीजें जो होती हैं वो मकरूह तंजीही भी तो होती है ना। ठीक है, तो मकरूह तंजीही को छोड़ देना चाहिए क्या काफिरों के लिए, और मुस्तहबात को जो है वो काफिरों के लिए हमेशा छोड़ देना चाहिए। जी जरा जवाब देना, अभी आप लोगों को एक बात बताइए उसकी रोशनी में, अगर वो बात समझ में आई है तो उस रोशनी उसकी रोशनी में जवाब दें। जी जी, चूंकि एक स्टूडेंट आप में से यहीं बैठे हुए हैं, तो उनका जवाब यह है कि मशवरे के साथ करना चाहिए। ठीक है, अपने टीचर से पूछ के करना चाहिए। अगर आपका टीचर कह रहा है कि आप इन चीजों को छोड़ दें, ठीक है, तो फिर आप छोड़ दें, और अगर कह रहा है कि नहीं इस सिचुएशन के अंदर छोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है इन चीजों को छोड़ने की, तो आप ना छोड़ें। ठीक है ना, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के साथ चलना है, जिंदगी गुजारनी है इस रिलेशनशिप के साथ, पूछ के चलना है। ठीक है, दीन के मामलों में अगर आप खुद टीचर के लेवल पर नहीं पहुंचे हैं अभी, ठीक है भाई, अगर आप टीचर के लेवल पर पहुंच गए तो अब आपको जो है इस्तिखारा करना चाहिए। ठीक है ना, और अगर आप जरूरी समझते हैं तो अपने से कोई ना कोई सीनियर टीचर होगा उससे मशवरा कर लें। ठीक है, लेकिन अगर आप टीचर के लेवल पर पहुंच चुके हैं तो इस्तिखारा विल बी सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है ना, लेकिन अगर आप टीचर के लेवल पर अभी नहीं पहुंचे हैं, अभी आपको दीन के ऊपर ऐसा उबूर हासिल नहीं हुआ और अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल हासिल नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि नफ्स जो है ना वो उकसाता है हमेशा, दीन कॉम्प्रोमाइज करने के ऊपर उकसाता है नफ्स। ठीक है ना, तो अगर आपका नफ्स जो है अभी तक काबू में नहीं आया तो आपके लिए जरूरी है कि किसी दूसरे से पूछें, किसी सीनियर, अपने से ज्यादा सीनियर से पूछें। ठीक है, और अगर आपका काबू में आ गया है तो फिर उस वक्त आप इस्तखारा करें। इस्तखारा क्या चीज होती है, इस्तखारा क्या चीज होती है जी, असल इस्तखारा की हकीकत क्या है बताएंगे कोई, इस्तखारा की असल हकीकत इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है, इस्तखारा क्यों करते हैं, मशवरा, इस्तखारे में आप मशवरा करते हैं, नहीं मशवरा जो है ना दूसरी चीज के लिए इस्तेमाल किया, नहीं मशवरा भी जो है वो लफ्ज सही नहीं है। ठीक है, अल्लाह से मशवरा कह तो देते हैं समझाने की खातिर, खैर की तलब, ठीक ठीक है ना, अल्लाह ताला से खैर मांगते हैं, अल्लाह ताला से गाइडेंस मांगते हैं, गाइडलाइंस मांगते हैं, अल्लाह ताला से मशवरा नहीं करते। ठीक है, मशवरा तो उस वक्त किया जाता है कि जबकि आपके पास ऑप्शन हो कि जी आप माने ना माने, ठीक है ना, मशवरे में फर्जियत तो नहीं आ जाती ना। इवन नबी अलैहिस्सलाम के मशवरे, सहाबा पूछते थे ना कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो है वो हुक्म फरमा रहे हैं कि आप मशवरा दे रहे हैं, ये आपका मशवरा है कि आपका हुक्म है? अगर आपका हुक्म है सराखों पर हम अपनी सारी ख्वाहिशात सारी अपनी अंडरस्टैंडिंग को पीछे छोड़ देंगे, लेकिन अगर आपका मशवरा है तो मेरी बात यह है कि मैं उसके साथ नहीं रह सकती। राइट, एक सहाबिया थी ना, उनको नबी सल्लम ने फरमाया था कि क्यों क्यों उसके साथ नहीं रहती, वो तो तुम्हारा दीवाना हुआ है, तुम उससे क्यों तलाक चाहती हो? ठीक है, तो साहबिया ने कहा कि नबी सल्लम आप हुक्म फरमा रहे हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपका मशवरा है तो मैं माजत चाहती हूँ, मैं उनके साथ नहीं रह सकती। तो मशवरे में तो ऑप्शन होता है, अल्लाह ताला के सामने हम ऑप्शन को तो ये देते हैं, अल्लाह ताला जरा मशवरा दीजिए फिर मैं डिसाइड करूंगा कि जी फॉलो करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो अल्लाह ताला से खैर की तलब होती है, अल्लाह ताला से रहनुमाई मांगते हैं, गाइडलाइंस मांगते हैं। ठीक है, लेकिन मशवरा जो होता है वो हमारे दीन का एक अहम तरीन जुज है। सिर्फ इस्तखारे से काम चलाने वाले जो लोग होते हैं ना वो ठोकर खाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस्तखारे के अंदर जो है ना वो इंसान का नफ्स भी इन्वॉल्व हो जाता है, जिसका नफ्स जो है वो अभी पाबंद नहीं हुआ होता ना, तो वो नफ्स जो होता है ना वो फिर बीच में आड़े आते हैं। जैसे एक लड़की है, उसको कोई लड़का पसंद आ गया, ठीक है ना, अब उसके साथ तो उसकी दिल लगी हो गई है, अब वो बैठी इस्तखारे कर रही है कि जी मैं इसके साथ शादी करूं कि ना करूं, अब उसको इस्तखारे में क्या जवाब आएंगे आपके ख्याल में? बस वही जवाब आते हैं, वो हर ख्वाब में फिर वही नजर आता है, क्योंकि वही छाया हुआ होता है ख्वाबों के ऊपर, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे हाँ हर चीज के अंदर। तो वो इस्तखारे तो करती है, लेकिन वो इस्तखारे क्या होते हैं? वो चटखारे होते हैं, असल में इस्तखारे नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ना इस्तखारे का ढोंग जो लोग रचाते हैं ना वो ढोंग होता है असल में, वो असल में इस्तखारे होते नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से मशवरा एक्चुअली मशायख फरमाते हैं कि मशवरे को गालिब रखो इवन इस्तखारे के ऊपर। ठीक है, इस्तखारा करो जरूर सुन्नत समझ करके, लेकिन अपने नफ्स के धोखों से अपने आप को बचाने के लिए मशवरा जो है ना वो भी साथ साथ करो, और अपना अगर कोई तुम्हारा कोई शेख है तो उसके मशवरों को तुम अहमियत दो, क्योंकि वो आपको जो है ना वो आपके मन मर्जी के मन पसंद के मशवरे नहीं देगा। ठीक है, अच्छा, तो दीन के अंदर सिर्फ फराइज नहीं होते, दीन के अंदर मकरूहात भी होते हैं, मुस्तहबात भी होते हैं और मुबाह काम भी होते हैं, तो इस वजह से गैर मुस्लिमों को दावत देने में कभी जो है मुस्तहबात को छोड़ना पड़ता है, लेकिन हर सिचुएशन में हम नहीं छोड़ सकते। लेकिन जब हम होते हैं ना कि जी हमारा दीन तो है ही बिरयानी वाला दीन, ठीक है ना, वो अमरीका के अंदर बैठे हुए थे चंद दोस्त, तो कहने लगे कि बस, एक साहब कहने लगे कि बस जल्दी से जो है ना वो सारे मुसलमान कन्वर्ट हो जाएं तो सारे मसले हल हो जाएं। तो वो तो इब्तदाई दिन थे साजिश के भी, लेकिन मैंने सोचा क्या कहना क्या चाह रहे हैं, इनकी अपनी जिंदगी देखो, दीन का कुछ पता नहीं है, कुछ फराइज पर भी अमल नहीं कर रहे हैं, गुनाहों से बचने का कोई इंतजाम नहीं है, और चाहते हैं कि सारे अमरीकी कन्वर्ट हो जाएं। मैंने कहा फिर क्या करेंगे, जब सारे अमरीकी कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या बैठ के सारे बिरयानी खाएंगे उसके बाद, और क्या होगा? ठीक है ना, तो ये हम इसलिए चाहते हैं कि जी यानी ये तो हमारा हमारी तबलीग की ये हैसियत होती है, इसी वजह से आप चले जाएं कॉन्फ्रेंसेस के अंदर। आज तो खैर आवे का आवे बिगड़ चुका है, लेकिन इवन आज से अगर 15 साल पहले भी इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस के अंदर आप जाते हैं ना, तो शरीयत और सुन्नत की पामाली जितनी वहां पर होती है पता नहीं और कहीं होती होगी कि नहीं होती होगी। ठीक है ना, ये जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेज होती हैं पूरे यानी दुनिया के भी लोग आते हैं उसके अंदर, और पूरा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और यूरोप और न जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं उसके अंदर, और खूब एक से एक मकाले पढ़े जा रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन शरी तकाजे क्या चीज, क्या नाम होता है शरी तकाजों का, उनका कोई वहां पता ही नहीं होता, और इसी वजह से अब वहां पर यह हाल हुआ है कि कॉन्फ्रेंस अंदर इस्लाम पर हो रही होती है और बाहर जो है ना उन्हीं की औलादें बाहर खड़े होकर के मुजाहरे कर रही होती हैं कि हम भी इस्लाम छोड़ चुके हैं, तुम भी इस्लाम छोड़ो। ठीक है, ये एक्स मुस्लिम वाले ना अब इन्हीं कॉन्फ्रेंसिस के बाहर जो है वो बाकायदा मुजाहरे कर रहे हैं, प्ले कार्ड उठा करके, बैनर्स उठा करके। ठीक है, और यहाँ पर जो लोग आते हैं, जो नौजवान आते हैं, फिर वो उनको अपनी तरफ माइल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो हाल होता है इन कॉन्फ्रेंसेस का, और इन कॉन्फ्रेंस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज होती थी कि बस किसी तरह से नॉन मुस्लिम्स को मुसलमान बनाओ, ये गोरों को मुसलमान बनाओ, कालों को मुसलमान बनाओ। ठीक है, तो ये नहीं है हमारा दीन का तरीका, तो प्रायोरिटाइज करना होता है, लेकिन प्रायोरिटाइज कौन करेगा, कैसे करेगा, ये वही कर सकता है कि जिसको सही इल्म हासिल हो, और जिसके जिसने अपने नफ्स के ऊपर कुछ मेहनत करी हो वही प्रायोरिटाइज सही कर सकता है। ठीक है, तो फरमाया कि उन उलमा के लिए एक अहम हिदायत है जो गैर मुस्लिमों के शुभात के इजाले यानी गैर मुस्लिमों को करीब करने की खातिर जो है वो ऐसे काम कर बैठते हैं कि जिससे आम मुसलमानों को भी शकूक व शुभात पैदा हो जाते हैं। बाद की आयतों में कुरान करीम ने इसी बात को पूरी वजाहत से बयान फरमाया है कि अम्मा मन इस्तगना फअंता लहु तसद्दा, यानी जो शख्स आपसे और आपके दीन से इस्तगना और बेरुखी बरत रहा है आप उसके तो दरपे हैं, यानी आप उसके पीछे पड़े हुए हैं कि किसी तरह से ये मुसलमान हो जाए, हालांकि ये आपके जिम्मे नहीं है। ठीक है, ये तो आपकी यानी आपको कोई दरोगा बना करके तो नहीं, दारोगा बना करके तो नहीं भेजा गया कि अगर ये मुसलमान नहीं हुआ तो आपसे पूछेंगे कि जी क्यों मुसलमान नहीं हुआ। जैसे कि प्रिजन का दारोगा, अगर कोई प्रिजनर भाग जाए तो दारोगा को पकड़ते हैं ना कि तुम ड्यूटी नहीं दे रहे थे, ये कैसे भाग गया इधर से। तो ये अल्लाह ताला ने नबी का काम नहीं लगाया है। ठीक है, आयत मैं बार बार सोचता हूँ कि जरा सा रिफ्रेश कर लूँ जहन में, लेकिन हाँ लस्ता अलैहिम बिमुसैतर, ठीक है कि आप इनके ऊपर दरोगा नहीं बनाए गए तो ये आपके जिम्मे नहीं है, और अगर वो मुसलमान ना हो तो आप पर कोई इल्जाम नहीं है। और जो शख्स दौड़ता हुआ तलब इल्म दीन के लिए आया और वो खुदा ताला से डरने वाला भी है, आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। इसमें वाज़े तौर पर आहन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हिदायत दी गई कि मुसलमानों की तालीम और इस्लाह और तरबियत करके उनको पक्का मुसलमान और कवी मोमिन बनाना ये गैर मुस्लिमों को इस्लाम में दाखिल करने की फिक्र से ज्यादा अहम और मुकद्दम है, इसकी फिक्र ज्यादा चाहिए। वल्लाहु आलम। ठीक है, अल्लाह आलम भी फरमा दिया, लेकिन ये एक ऐसा उसूल है जो कि अकल को भी बिल्कुल क्लियर लगता है। ठीक है भाई, अपने फोर्ट्रेसेस को मजबूत करो ना पहले, बजाय इसके कि एक्सपेंशन के ऊपर हर वक्त जो है आप मेहनत करे चले जा रहे हैं, अपने फोर्ट्रेसेस जो आ चुके हैं उनके ऊपर आप कोई मेहनत ही नहीं कर रहे, नए लोगों के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी ये एक कॉमन सेंस की भी बात है, अकल की भी बात है, और अल्लाह ताला ने इस बात को हमारे हमारे सामने खोल भी दिया है और मुफस्सरीन के जरिए से इसको कलमबंद भी करवा दिया है। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस होती हैं। कुछ मशायख ऐसे होते हैं कि जो के काम कर रहे होते हैं बाहर की तरफ, ठीक है ना, उनका फोकस जो है वो बाहर की तरफ होता है, अंदर का जो काम होता है ना, अंदर के फोर्ट्रेसेस को मजबूत बनाना, ये काम जो है वो कोई और कर रहा होता है उनके लिए। ठीक है, या उन्होंने अपने सबॉर्डिनेट्स बनाए हुए होते हैं, अपने खुलाफा बनाए हुए होते हैं, अपने जूनियर्स बनाए हुए होते हैं कि जिनको वो काम ये वाला काम सपोर्ट कर रहे होते हैं, खुद जो है वो बाहर मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, मुस्तकिल सफर में रहते हैं, मुस्तकिल जो है वो लोगों से मुलाकातों में रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये काम उन्होंने किसी और के सुपुर्द किया हुआ होता है, तो ऐसे भी यानी केसेस होते हैं। तो इस वजह से उलमा के जाहिर के अहवाल देख करके ना उनसे बदगुमान नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये एक उसूल याद रखें। अभी रिसेंटली इसके और भी ज्यादा जरूरत पड़नी शुरू हो गई है कि उलमा की जाहिरी तौर पर कोई गलती नजर आ भी जाए ना तो उसके बारे में कोई फैसला कर लेने से पहले आप बहुत तावील दें उनके लिए, बहुत सारी तावीलें यानी एक्सप्लेनेशंस एक्सक्यूजेस बहुत ज्यादा हजार देनी पड़े ना, हजार दें। ठीक है ना, और दूसरों बड़े दूसरे उलमा से मशवरा भी करें बिफोर मेकिंग अप योर माइंड। ठीक है ना, बिकॉज वो आलिम है, साहिब राय हैं। ठीक है ना, उनके पास इल्म भी है, तकवा भी है, दीन की दावत के उनके पास एक्सपीरियंस भी है। अब अगर वो कोई काम कर रहे हैं जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा तो जरूरी नहीं है कि वो गलत काम हो जस्ट बिकॉज आपके समझ में नहीं आ रहा या आप जैसों के समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो इस वजह से ना आलिम की कोई भी गलती देखने से पहले देखने पर कि भाई थ्योरी में तो मैंने ये पढ़ा था, उनका काम तो थ्योरी के खिलाफ जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आज लोग पीछे पड़े हैं मौलाना तारिक जमील साहब के। ठीक है कि जी हदीस में तो हमने ये पढ़ा था कि बुराई नजर आए तो तुम उसको हाथ से रोक दो, और हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोक दो, और जुबान से नहीं रोक सकते दिल में बुरा करो, और आप जो खड़े होकर के तारीफें करना शुरू हो गए हैं। तो अब जो है वो लोग सोशल मीडिया वॉरियर्स, राइट, सोशल मीडिया मुजाहिदीन जो हैं वो सारे के सारे मौलाना तारिक जमील साहब के गले पड़ गए। ठीक है ना, तो ये यही गलती है कि आलिम, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा जो है वो यानी माशाल्लाह इज्जत रखने वाला, जिसको के सिर्फ अवाम में इज्जत की, देखें ये बात भी याद रखें, अवाम में इज्जत की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है ना, अवाम जो होते हैं ना, कल अनआम होते हैं। अनआम का मतलब क्या होता है, सूरह अनआम मवेशी। अवाम जो होते हैं मवेशी, क्यों मवेशी होते हैं अवाम जरा बताएं, अवाम मवेशी क्यों होते हैं? होते तो इंसान है ना, और इंसान को तो अल्लाह ताला ने लकद करमना बनी आदम बनाया है, तो फिर हमारे मशायख जो हैं वो उनको ये आयत नहीं पता, लकद करमना बनी आदम, तो वो क्यों कहते हैं अवाम कल इनआम, कल अनआम क्यों कहते हैं जी? अवाम मवाशी की तरह क्यों होते हैं? इल्म से खाली होते हैं। अवाम अवाम होते ही इसलिए हैं क्योंकि उनके पास इल्म नहीं होता। अगर इल्म होता तो वो अवाम नहीं होते, वो उलमा होते, ठीक है? और जिसके पास इल्म नहीं होता ना, उसको हकाना बड़ा आसान होता है, ठीक है ना, उसको हाकना बड़ा आसान होता है। तो मवेशी को भी तो हाका जाता है, वो भी हक जाता है, उसी तरीके से कम इल्म आदमी वो भी बड़ी आसानी से हक जाता है। इस वजह से फरमाया अल अवामु कल अनआम, ठीक है, हर तरफ निकल जाते हैं, वो निकल नहीं जाते, खुद से नहीं निकलते, उनको निकाला जाता है, ठीक है। ये शैतान जो है ना, ये सबसे बड़ा शीप हर्डर है, ठीक है, सबसे बड़ा जो है ना वो है। तो उसको शैतान और शैतान के चेहरे जो है वो जिधर हाँकना चाहते हैं वो हक जाते हैं। तो इस वजह से अवाम की अक्सरियत देख करके कोई फैसला नहीं कर लेना चाहिए कि जी हाँ इन मौलाना तारिक जमील साहब को तो लाखों लोग सुनते हैं जी, ये इसकी ये कोई वैल्यू नहीं है, इसकी इसकी कोई क्राइटेरिया नहीं है। इनसे ज्यादा सुनने वाले जो है ना वो पॉप सिंगर्स को सुनते हैं, ठीक है ना, पॉप सिंगर्स और एक से एक जो जो वो हैं क्रिकेटर्स हैं और ना जाने के कैसे कैसे जो तमाशबीन होते हैं, उनको इनसे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, इनसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, ठीक है ना, पागल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं उनके लिए स्टेज पर चढ़ करके, ठीक है ना। तो मौलाना तारिक जमील के लिए तो कोई ऐसा दीवाना नहीं होता, ठीक है ना। तो अवाम इज नॉट द स्टैंडर्ड, ठीक है, ये बात याद रखें, अवाम इज नॉट द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या होता है? उलमा, ठीक है ना। और ये उन शख्सियात में से हैं कि जिनको उलमा की ताईद हासिल है, राइट, अकाबिर उलमा की ताईद हासिल है। ऐसे शख्स के ऊपर कोई बात हमें समझ में ना आई कि उन्होंने ये बात क्यों कह दी, अब शुरू हो गए जी उनके ऊपर ताने देना और उनको जो है वो हदीसें सुनाना कि हदीस में तो ये आता है, कुरान की ये तालीम है और दीन की ये तालीम है, और उन्होंने ऐसा क्यों ना किया और उन्होंने वैसा क्यों ना किया। ये जहालत की अलामत है खाली, और ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से जो उलमा होते हैं वो अगर कोई ऐसी काम कर भी रहे हो ना कि वो गैर मुस्लिमों के ऊपर ज्यादा तवज्जो दे रहे हो, जैसे कि इंडिया के अंदर माशाल्लाह बहुत सारे उलमा हैं जो कि खास हिंदुओं में काम कर रहे हैं, अब कोई उनके पीछे पड़ जाए कि जी मुसलमानों की हालत देखी है आपने, मुसलमान ऐसे हैं मुसलमान वैसे हैं, और आप जो है वो हिंदुओं की तबलीग में लगे हुए हैं, तो भाई अल्लाह के बंदे वो आलिम है, वो कोई अवाम नहीं है, वो साहिब राय है, उसके पास इल्म भी है और माशाल्लाह अच्छा खासा मुत्तकी इंसान मशहूर है वो उलमा के दरमियान, ठीक है ना। तो अगर वो हिंदुओं में काम कर रहा है ना तो वो सही कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा हो जो कि ना उसके पास इल्म है ना उसके पास जो है वो दीन उसकी जिंदगी गुजार रहा है और वो खड़े होकर के हिंदुओं में काम करना शुरू हो जाए, तो उसको फिर उलमा, ये भी उलमा की जिम्मेदारी है कि उसको समझाएं, ठीक है। अवाम उसको भी कुछ नहीं कह सकते, हमें तो अपने काम से काम रखना चाहिए, अपनी इसलाह के ऊपर मेहनत करनी चाहिए, हम अवाम है, हमें हमारा फोकस अपनी इसलाह होना चाहिए, ना कि जो है वो हर एक को जो है देखते रहे कि जी वो क्या सही काम कर रहा है कि वो गलत काम कर रहा है। ये मनसब अल्लाह ताला ने उलमा को दिया है, ठीक है। तो उलमा फिर इसी वजह से उनको गाइड करने की कोशिश करते रहते हैं, अगर बराह रास्त कर सकें तो बराह रास्त करते हैं, और अगर उनके साथ कोई ऐसा राबते का ताल्लुक ना हो तो फिर जो है वो कॉमन मीडिया के जरिए से फिर उनके इसलाह की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उलमा के बारे में बहुत केयरफुल रहने की जरूरत होती है। तो आगे फरमाया कि इसके बाद कुरान मजीद का अल्लाह की तरफ से तज़किरा और नसीहत होना और उसका मुकर्रम आलीशान होना बयान फरमाया है कि ये फी सुहुफ़ मुकर्रमा मरफूअत मुतहरा। तो कभी ये जाहिरी तौर पर हाँ ये तो सर, ये तो इसका सोच रहा ना। अच्छा अच्छा ठीक है। तो फी सोहफ मुकर्रमा मरफूअत मुतहरा, सोहफ से मुराद लौहे महफूज है, वो अगरचे एक ही है मगर इसको बसीगह जमा सोहफ से ताबीर इसलिए किया गया कि इसमें सब सहाइफ आसमानी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अगरचे के वो एक बिग एक रजिस्टर है, तो लेकिन उसको सहाइफ इसलिए कहा गया क्योंकि कुरान भी उसके अंदर मौजूद है, तौरात भी मौजूद है, इंजील भी मौजूद है, जबूर भी मौजूद है, और सब कुछ मौजूद है उसके अलावा जो कुछ है वो भी सब कुछ मौजूद है उसके अंदर। वल तकुम मिनकुम यदउना इलल खैरी आयत عوام کے لیے ہے یا علماء کے لیے ہے؟ یہ آیت جو ہے نا یہ ہر مسلمان کے لیے ہے، ٹھیک ہے، ہر مسلمان کے لیے ہے، لیکن ہر مسلمان اس کو امپلیمنٹ کیسے کرے گا، ٹھیک ہے نا، یہ تفصیل اس آیت کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تؤمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ٹھیک ہے، کہ تم امر کا حکم کرتے ہو اور نہیں سے روکتے ہو، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیسے امر کرنا ہے اور کیسے نہیں سے روکنا ہے، یہ حالات پر ڈپینڈ کرتا ہے، بندے بندے پر ڈپینڈ کرتا ہے، کرنے والے پر ڈپینڈ کرتا ہے، اور کس کو کیا جا رہا ہے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. تو بہت ساری تفصیل ہے اس کے اندر، یعنی طریقہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے اوپن چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے نا. اب کون طریقہ بتائے گا؟ ٹھیک ہے، جو نفس پرست ہو، اپنی خواہش پرست ہو، یا اپنے غصے سے مغلوب ہو، اپنے مزاج سے مغلوب ہو، وہ طریقہ بتائے گا؟ نہیں. یہ طریقہ کون بتائے گا؟ یہ علماء اس کی سچویشن کے حساب سے اس کو گائیڈ کریں گے کہ تمہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیسے کرنا چاہیے، کہاں کرنا چاہیے، کہاں نہیں کرنا چاہیے، کہاں خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے، اور انتظار کرنا موقع کا کہاں ضروری ہے، اور کہاں پر آپ موقع کا انتظار نہیں کر سکتے، یو جسٹ ہیو ٹو ڈو اٹ رائٹ اوے، ٹھیک ہے نا. یہ سب تفصیلات جو ہیں وہ ٹیچر بتائے گا، یعنی جو کہ علماء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ حکم پوری امت کے لیے ہے، اور اس کے اوپر ہم باقاعدہ بیانات کے اندر بھی بات کر چکے ہیں، کلاس میں بھی، بلکہ میں اسی کلاس کے اندر خاص کر آگے سے معرف القرآن سے اس ٹاپک کو پڑھ بھی چکا ہوں ایک دفعہ. اچھا، وہ اگرچہ ایک ہی ہے مگر اس کو بصیغہ جمع صحف سے تعبیر اس لیے کیا گیا، اس میں سب صحائف آسمانی لکھے ہوتے ہیں، یا اس لیے کہ فرشتے اپنے صحیفے اس سے نقل کرتے ہیں، یعنی ہر فرشتے کے پاس بھی ایک چھوٹا چھوٹا اس کے حساب سے رجسٹر ہوتا ہے، تو اس میں وہ یعنی لوح محفوظ سے نقل کر رہے ہوتے ہیں، جہاں جہاں تک اللہ تعالیٰ ان کو لمٹس بتاتے ہیں کہ جی یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نقل کر لو، اور آپ جا کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کرو. مرفوعہ سے مراد ان صحیفوں کا عند اللہ عالی شان ہونا ہے، یعنی اونچی شان والا، عالی شان کا مطلب اونچی شان. ایسے نام جو ہے نا وہ مناسب نہیں لگتے، یہ ذی شان، عالی شان، ہم لوگوں بچوں کے نام رکھ دیتے ہیں، پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ ماشاء اللہ ذی شان ہوتے ہیں، عالی شان ہوتے ہیں، پھر وہ کسی کی بات ہی نہیں سنتے، اکثر ایسا دیکھا گیا ویسے. تو بہتر ہے کہ اس سے کوئی اچھا نام رکھ لیں، کوئی عاجزین انکساری والا نام رکھ لیں، صحابہ کرام کے نام کم پڑ گئے ہمارے لیے، جو ہم خامخواہ ادھر ادھر کے نام دیکھتے رہتے ہیں. تو anyway، عالی شان کے لفظ سے یہ بات ذہن میں آ گئی تو کر دی. مطہرہ، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نیک آدمی شان ہو نہیں سکتا، یہ شان نیک بن ہی نہیں سکتا، بھی نہیں ہے. مطہرہ سے مراد یہ ہے کہ جنابت والے آدمی اور حیض نفاس والی عورت اور بے وضو کے لیے ان کا چھونا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ فقہ کا جو اصول ہے کہ ان حالات میں جو انسان ہوتا ہے تو وہ قرآن کے الفاظ کو مس نہیں کر سکتا، ٹچ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. تو یہ علماء کابرین کا یہی مسلک ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اسی کو فالو کریں. اس کے پیچھے ان کے پاس قرآن کی دلیلیں جو ہیں وہ یہی آیات ہیں، لا یمسہ الا المطہرون والی آیت، سورہ رحمان والی، یا سورہ واقعہ والی ایکچولی، اور اس طرح کی آیات ان کے سامنے دلیلیں ہیں، اور اس کے علاوہ حدیثیں بھی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. بےعیدی موبائل پر بھی، موبائل کے بارے میں، کیونکہ یہ بہت ہی ریسنٹ قسم کی ایجاد ہے، ٹچ سکرین والا جو کانسیپٹ ہے، تو اس وجہ سے نا اس کے اوپر علماء کے ملٹیپل اوپینینز آپ کو مل جاتے ہیں، کہ کسی دارالافتاء نے کچھ کہا، کسی دارالافتاء نے کچھ کہا. تو چاہیے یہی کہ ہم کسی ایک دارالافتاء جو کہ اہل حق کا دارالافتاء ہو، تو وہاں سے فتویٰ لے کر کے ان کی اس کو فالو کریں، ٹھیک ہے. یہ عاجز خود جو ہے وہ اپنا عمل اتنا بتا دیتا ہے کہ موبائل کے اوپر جو سکرین پر جب ہوتا ہے نا، یعنی وہ ایپ کوئی کھلی ہوتی ہے جس میں قرآن کی آیات ہیں، یا تو اس وقت جو ہے وہ کسی مفتی نے فتویٰ دیا تھا جو کہ میں فالو کرتا ہوں کم از کم، کہ اس وقت جس وقت آپ کی سکرین کے اوپر صحیفہ کھلا ہوا ہے، تو مصحف کھلا ہوا ہے، تو اس وقت اس موبائل کی حیثیت جو ہے نا وہ مصحف کی جیسی ہو جاتی ہے، تو اس کو بے وضو نہیں چھونا چاہیے، پورے پورے موبائل فون کو، ٹھیک ہے. اور جس وقت وہ بند ہوتا ہے تو بند کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ پاورڈ آف ہے بیسکلی، ٹھیک ہے، وہ جو بٹس ہے نا وہ لائٹ اپ نہیں ہوئی ہوئی، وہ پاور آف ہوئی ہوئی ہیں، تو اب وہ مصحف کی حیثیت نہیں رکھتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ کہ بے وضو حالت کے اندر آپ کسی ایسی کتاب کو پکڑ سکتے ہیں جس کے اندر قرآنی عربی، یعنی جو عربی قرآن ہے وہ 50% سے کم ہو، तो ऐसी किताब को आप बेवजू हालत में छू सकते हैं, जैसे मारफुल कुरान। मारफुल कुरान के अंदर पूरा यानी कुरान मौजूद है, लेकिन उर्दू जो है वो कुरान के मुकाबले में ज्यादा है, ठीक है। तो इसको आप बेवजू हालत में पकड़ तो सकते हैं, खोल भी सकते हैं, लेकिन इसमें भी जहां पर कुरान की आयात लिखी हुई है ना, उनको टच ना करें बेवजू हालत में, ठीक है। क्योंकि ये इससे मुराद जो है वो यानी किसी मटेरियल के ऊपर, चाहे वो कागज हो चाहे वो कपड़ा हो, ठीक है, जैसे फैब्रिक के ऊपर भी तो कुरान की आयात लिखी होती है ना, कड़ी भी होती है कभी, लिखी भी होती है, या टच स्क्रीन हो, कंप्यूटर की स्क्रीन हो, ठीक है। तो कुरान के अल्फाज जो हैं वो अहम है, तो उनको बेवजू हालत में या नापाकी की हालत में, हैज नफास की हालत में नहीं छूना चाहिए। बेअैदी सफरतिन किरामिन बररतिन, तो सफरा बेफतहतैन, यानी दो दो फतह हैं, सीन के ऊपर भी और फा के ऊपर भी फतह है, तो साफिर की जमा भी हो सकती है, जिसके मानी कातिब के हैं, किताबत करने वाला। इस सूरत में इससे मुराद फरिश्ते किरामन कातिबैन या अम्बिया अलैहिस्सलाम और उनकी वही को लिखने वाले हजरात होंगे। तो साफिर से फिर तीनों कैटेगरीज मुराद हो सकती हैं। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से यही तफसीर मनकूल है सफरा की। अच्छा, और लफ्ज़ सफरा सफीर बमाने कासिद की जमा भी हो सकती है, इसलिए कि अरबी जुबान के अंदर ऐसे अल्फाज होते हैं कि जो कि मुख्तलिफ अल्फाज की जमा होती हैं कभी, या उनकी जमे मुख्तलिफ होती हैं, या कभी ऐसा होता है कि लफ्ज़ तो एक ही है लेकिन अरबी जुबान में वो दो मानों में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। जैसे आज सुबह एक क्लास में यार पढ़ा रहा था कि जारिया, जारिया का लफ्ज है अरबी जुबान का, ठीक है, ये लफ्ज जो है वो बांदी के माने में भी इस्तेमाल हुआ है अरबी में, और ये कश्ती के माने में भी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो ऐसे अल्फाज अरबी के अंदर होते हैं। तो लफ्ज सफरा का जो मानी है, फिर सफीर बमाने कासिद की जमा भी हो सकती है। अगर नबी अलैहिस्सलाम ने बता दिया होता ना, कोई सही हदीस मौजूद होती कि सफरा का क्या मतलब है, तो ये डिस्कशन नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन चूंकि नबी अलैहिस्सलाम ने इस लफ्ज के मानी नहीं बताए, अब इब्ने अब्बास रतान ने बताए, इब्ने अब्बास रतान जो है वो अपनी नॉलेज के बेसिस पर भी बता सकते हैं और नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से भी सुन के बता सकते हैं, लेकिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया नहीं कि ये मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, इस वजह से ना एहतमाल बाकी है कि हो सकता है इसका कोई और मानी भी हो, क्योंकि इब्ने अब्बास बेशक जलीलुल कदर सहाबी हैं लेकिन वो फाइनल अथॉरिटी तो नहीं है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी फाइनल अथॉरिटी तो नहीं है ना। इस वजह से एहतमाल है कि लफ्ज़ सफरा सफीर के मानी में भी हो सकता है, क्योंकि अरबी जुबान में इस्तेमाल होता है ये सफीर के मानी में। तो सफीर बमाने कासिद की जमा भी हो सकती है। इस सूरत में इससे मुराद रसुल यानी रसूल की जमा रसुल, मलाइका यानी रसुल मलाइका और अंबिया अलैहिस्सलाम और वही की किताबत करने वाले हजरात सहाबा होंगे, ठीक है, यानी वो मलाइका जो कि रिसालत का काम करते हैं, यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम। और उलमाए उम्मत भी इसमें दाखिल हैं, क्योंकि वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत के दरमियान सफीर और कासिद हैं, ठीक है। रसूल और उम्मत के दरमियान सफीर उलमाए कराम होते हैं, ठीक है। तो अपनी तरफ से ये बातें नहीं करते रहते हैं हर वक्त बैठ करके, ठीक है, बल्कि बड़े मशायख, बड़े उलमाए कराम, और हत्ता के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें भी इस पर शवाहिद हैं, शाहिद हैं, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस आपने यकीनन सुनी होगी, इश्क नबी के टॉपिक पर जब बात करते हैं उलमा, तो ये हदीस सुनाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक दफा बैठे दुआ कर रहे थे कि ए अल्लाह मुझे मेरे मेरे क्या लफ्ज़ था, अस्हाब से नहीं बल्कि मेरे चाहने वालों से मिला देना, कुछ इसके लफ्ज मेरे बिल्कुल ध्यान में नहीं आ रहा, मेरे चाहने वालों से मिला देना, ठीक है ना, या मेरे जो है वो दोस्तों से मिला देना। तो आप सल्लम के एक सहाबी साथ मौजूद थे, तो उन्होंने पूछा कि ए नबी सल्लम, आपके चाहने वाले आपके दोस्त तो हम हैं, तो आप तो हमारे साथ हैं, आप किन से मिलने की बात कर रहे हैं? तो नबी सल्लम फरमाया कि तुम लोग मेरे सहाबी हो, तुमने मेरे ऊपर कुरान नाजिल होते हुए, नहीं भाइयों से नहीं, तो सहाबी शायद, एनीवे तुम मेरे सहाबी हो, तुमने मेरे ऊपर कुरान नाजिल होते हुए देखा, तुमने जिब्राइल को आते हुए देखा, तुमने फलानी चीज देखी, तुमने फलानी चीज देखी, तुम लोग तो हो ही मेरे चाहने वाले, तुम लोग तो हो, यानी इस तरह का मफहूम है इस हदीस का। लेकिन मैं उन लोगों से मुलाकात की दुआ कर रहा हूं कि जिन्होंने मुझे नहीं देखा, बल्कि वो मेरे तज़किरे सुनेंगे अपने उलमा से, वो मेरे तज़किरे सुनेंगे अपने उलमा से। ठीक है, तो यानी नबी और उम्मती के दरमियान वास्ता कौन है? उलमा। नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में किताबें होती थी, ये नहीं है कि किताबत उस जमाने में शुरू ही नहीं हुई थी, कोई किताब नाम की कोई चीज नहीं होती थी, किताबें होती थी, दूसरे कल्चर्स में भी होती थी, और सहाबा ने भी लिखना शुरू कर दिया था, कुरान की आयात को भी और हदीसों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में लिखना शुरू कर दिया था। तो ये नहीं फरमाया कि वो पढ़ेंगे मेरे किस्से, बल्कि वो उलमा से मेरे वाकयात अपने यानी अपने उलमा से सुनेंगे। ठीक है, लेकिन वो मुझसे ऐसी मोहब्बत करेंगे कि अगर अपने बच्चों को बेचकर मुझसे मिलने की उनके पास यानी होता, तो वो अपने बच्चों को बेच करके मुझसे मुलाकात के लिए आ जाते। तो वहां पर भी उलमा का जिक्र फरमाया कि मेरे और उन लोगों के दरमियान उलमा होंगे, वास्ता, वसीला। ठीक है, तो यही फरमाया कि वो लोग भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत के दरमियान सफीर और कासिद हैं। अब यहाँ पर एक मुसीबत जो इस दौर की बड़ी बड़ी बनी हुई है, वो ये बनी हुई है कि जो किताबें पढ़ लेता है ना, और उसको हदीसें कुछ याद हो जाती हैं, या वो हदीसों से जो है वो इस्तदलाल करना शुरू कर देता है, तो वो आलिम बन जाता है अपने तौर पर, और लोग भी उसको आलिम मानना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ना इस बात को बार बार याद करने की जरूरत है कि नहीं, ऐसा शख्स आलिम नहीं बन जाता। ठीक है, तो अब उम्मत जो है वो बड़े जन, चूंकि ये गैर मुकलदियत का मिजाज एक बनाया गया है पहले वेस्टर्न एजुकेशन के जरिए से, ठीक है, और उसके बाद फिर जब वो वेस्टर्न एजुकेटेड लोग दीन की तरफ आए, तो उन्होंने वही एजुकेशन सिस्टम को जो है वो दीन के अंदर भी अप्लाई करना शुरू कर दिया। ठीक है, जिसके अंदर इज्जत और अदब नाम की कोई चीज नहीं होती, और जिसके अंदर अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन जो होती है सबसे अहम होती है। तो इस वजह से ना ऐसे लोग जो है वो खूब किताबें पढ़ पढ़ करके, खूब पढ़ पढ़ करके आलिम बन गए। ठीक है, और उन्हीं जैसे दूसरे जो थे जो इतनी किताबें नहीं पढ़ सके, उन्होंने इनको आलिम मानना शुरू कर दिया। ठीक है, तो हर पढ़ा लिखा आदमी जो होता है वो आलिम नहीं होता। तो यहाँ पे जिन उलमा की बात हो रही है ना, वो इस टाइप के लोगों की बात नहीं हो रही है, बल्कि वो जो सनद याफ्ता, जो कि अपने उलमा के साथ फुल टाइम बैठ करके दीन का इल्म तफसीली हासिल करते हैं, और उसमें उनको बाकायदा सनद भी मिली होती है, जो ऊपर से लेके नीचे तक एक सिलसिला चल रहा है, जो कि किताब किताब बेस्ड नहीं होता, बल्कि सोहबत बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये आलिम यहाँ पर मुराद होते हैं, जो जो के सफीर होते हैं नबी अलैहिस्सलाम और उम्मत के दरमियान। हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो शख्स कुरान पढ़ता है और वो किराअत में भी माहिर है, तो वो सफरा किरामिम अब्रार के साथ है, और जो शख्स माहिर नहीं मगर तकल्लुफ के साथ मुशक्कत उठाकर किराअत हासिल कर लेता, सही कर लेता है, इसके लिए दोहरा अजर है, क्योंकि मेहनत मुशक्कत करने के ऊपर मुजाहिदा करने पर डबल अजर मिलता है, एक और यानी एक और अजर मिलता है। तो किरात का माहिर जो होता है तो वो भी किरामिन बरारा के अंदर दाखिल हो जाता है, ऐसा शख्स भी। इससे मालूम हुआ कि गैर माहिर को दो अजर मिलते हैं, एक किरात कुरान का, दूसरा मुशक्कत उठाने का। इससे ये भी मालूम हो गया कि माहिर को बेशुमार अजर मिलेंगे। ठीक है, यानी गैर माहिर को तो दो मिलेंगे, तो माहिर जो है वो क्या महरूम रह जाएगा, वो पीछे रह जाएगा? नहीं, वो माहिर भी जो है वो कोई ख्वाब में तो नहीं माहिर बन गया ना, उसने मुशक्कत करी है तब जा करके वो माहिर बना है ना, तो ये तो अभी मुशक्कत कर रहा है, तो मुशक्कत करने पर इसको इसको यानी इसको वो करने के लिए, इसकी हौसला अफजाई करने के लिए नबी रसूल ने फरमाया कि ये मत समझना कि जब तक तुम माहिर नहीं बनोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें दो अजर मिल रहे होंगे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना शुरू हो जाना कि अब तुम माहिर से आगे बढ़ गए हो, नहीं, माहिर से आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो उसको तो बेशुमार अजर मिल रहा है, यानी बहुत ज्यादा अजर मिल रहा है। साबिक आयात में कुरान करीम का आलिशान वाजिबुल ईमान होना बयान करने के बाद काफिर इंसान जो कुरान के मुनकिर हैं उन पर लानत और अल्लाह की नेमत की नाशुक्री पर तंबीह है, और कुरान का मिन जानिबिल्लाह एक नेमत अजीम होना तो एक मानवी चीज है जिसको अहले इल्म व फहम ही समझ सकते हैं। यानी मानवीय चीज का मतलब ये होता है कि जो चीज जो है वो आपको लफ्जों में या मटेरियल तरीके से जो चीज आपके सामने वाजे नहीं होती है ना, तो वो कहते हैं कि जी मानन वाजे है। ठीक ठीक है, यानी इसके बारे में आप थोड़ा सा तफक्कुर करेंगे, गौर करेंगे, तो ये चीज़ आपके सामने वाजे हो जाएगी। लेकिन ये जाहिरी तौर पर वाजे नहीं होती, ये छुपी हुई तौर पर वाजे होती है, थोड़ी सी तफक्कुर की और गौर की जरूरत पड़ती है। तो अहले इल्म और अहले फहम जो होते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने फहम से नवाजा होता है और इल्म से नवाजा होता है, तो वो गौर फिक्र करते हैं और उनको ये बात समझ में आ जाती है कि ये मिन जानिबिल्लाह है, ये कोई अपनी तरफ से बना ही नहीं सकता ऐसी चीज़। बल्कि सूरह अवसा व तवल्ला तो उन मुकामात में से एक मुकाम है कि जो कि दलील के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है कि ये नबी अलैहिस्सलाम ने खुद नहीं लिखा, क्योंकि जो खुद लिखता है ना और अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है, ठीक है, तो वो अपनी बुराइयां अपनी गलतियां तो नहीं लिखता उसके अंदर, अपने ऊपर तंबीह तो नहीं लिखता, ठीक है। लेकिन सूरह अबसा में क्या है, नबी अलैहिस्सलाम को तंबीह की जा रही है, नबी अलैहिस्सलाम की गलती की इसलाह की जा रही है, ठीक है ना। तो भाई खुद लिखने वाला जो कि इज्जत भी करवाना चाहता हो अपनी, हाँ ठीक है, अपने आप को जलील करवाना चाहता हो तो फिर तो ठीक है, वो ऐसी चीजें लिखेगा, ठीक है। लेकिन जो कि बहुत बड़ा बनना चाहता हो और ऐसा बनना चाहता हो कि हर कोई उसकी मानकर चले, यही मसला था ना सारा का सारा, ठीक है, कि मेरी मान करके चलो, वरना कुफारे मक्का को कोई मसला को थोड़ी था कि भाई हाँ भाई तो एक और खुदा ऐड कर लेते हैं, भाई 300 300 खुदा पहले मौजूद हैं, 301वां अगर आ जाएगा तो क्या मसला है, कोई मसला को थोड़ी है, हम अपनी तरह इबादत करते हैं तुम तो अपनी तरह इबादत करो, मसला ये नहीं था, ये मसला था ही नहीं कि एक और खुदा ऐड हो जाएगा तो क्या मसला है, वो तो हर दिन जो है वो एक खुदा ऐड कर लेते थे, ठीक है। मसला ये था इसकी माननी पड़ेगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी माननी पड़ेगी, अपनी मान के नहीं चल सकते, ये सारा का सारा मसला था। तो जो शख्स कह रहा हो कि जी मेरी मान करके चलो, अब वो कोई किताब लिख रहा है, उसी किताब के अंदर अपने ऊपर तनकीद कर रहा है, और ये तनकीद नहीं, कल क्लास में एक दूसरी जो तफसीर की क्लास चल रही है उसमें जो आयात पढ़ाई है सूरह बनी इसराइल के अंदर, वहां तो अल्लाह ताला ने इतनी सख्त अल्फाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह फरमाई है, अगर आप जरा सा भी झुके इनकी तरफ तो हम आपको दुगना अजाब देंगे, दुनिया का भी अजाब देंगे, आखरत का भी अजाब देंगे, और आप कहीं कोई मददगार नहीं पाएंगे, ठीक है ना। इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, एक दफा हमारे हजरत ने बयान में उन अल्फाज को पढ़ा था अरबी में और कहा था कि इसका तर्जुमा करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, इसका तर्जुमा करने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर, ठीक है, इतने सख्त अल्फाज थे। तो अबसा वतवल्ला के अंदर भी वही बात हो रही है और वहां पर भी वही बात हो रही है, और उसके अलावा भी चंद मकाम पर अल्लाह ताला ने इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह फरमाई है। लेकिन साथ साथ फिर अल्लाह ताला फिर क्योंकि मोहब्बत और इश्क का ताल्लुक तो है ना, तो फिर कवर अप भी कर देते हैं अल्लाह ताला, ठीक है, लेकिन तंबीह तो हो गई ना, और ये चीज कुरान कयामत तक के लिए महफूज हो गई, हर कोई पढ़ेगा, चाहे मुसलमान हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, जो भी कुरान पढ़ेगा उसके सामने ये चीज खुलेगी। तो फरमाया कि जो तो अहले फहम और अहले इल्म जो हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि ये अल्लाह ही की तरफ से, जाहिर है ये सारी बातें फिर अहले इल्म लोगों को बात समझ में आ जाती है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी गढ़ी हुई किताब नहीं है। आगे उन इनामात इलाहिया का जिक्र है जो इंसान की तख्लीक से आखिर तक इंसान पर मबजूल होते रहते हैं, यानी इंसान की तरफ उनका नुजूल होता रहता है, मबजूल होते रहते हैं। ये मादी और महसूस चीज है जिसको अदना शऊर वाला इंसान भी समझ सकता है, ठीक है ना, ये मानवी चीज नहीं है, ये मादी चीज है, मटेरियल चीज, महसूस, जिसको आप महसूस कर सकते हो, आप फील कर सकते हो, सेंस कर सकते हो अपने 5 सेंसेस के जरिए से, ठीक है। तो ये आम आदमी भी सेंस कर सकता है बिकॉज इसको फहम और अकल यानी इतनी इल्म की जरूरत नहीं होती इन सब चीजों के लिए, ठीक है, अदना शऊर वाला आदमी, ठीक है, यानी जिसको कि अल्लाह ताला ने इल्म और फहम दिया है वो अदना शऊर वाला नहीं होता, वो आला शऊर वाला होता है, अदना शऊर वाले तो हम जैसे लोग होते हैं। इसी सिलसिले में तख्लीक इंसानी का जिक्र फरमाया, मिन अय्य शयइन खलक़ह मिन नुत्फ़ा, कि पहले तो इसमें एक सवाल किया गया कि ए इंसान तू गौर कर कि तुझे अल्लाह ने किस चीज से पैदा किया है, और चूंकि इसका जवाब मुतअय्यन है, इसके सिवा कोई दूसरा जवाब हो ही नहीं सकता, इसलिए फिर खुद ही फरमाया मिन नुत्फ़ा, ठीक है, यानी तुम जानते हो इस बात को, तो इस तरह के सवाल जवाब तो अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगहों पे करे हैं, यानी इंसान को नुतफे से पैदा किया, फिर फरमाया खलकहू फकद्दरहू, यानी यही नहीं कि नुतफे से एक जानदार का वजूद बनाया, बल्कि उसको एक खास अंदाजा और बड़ी हिकमत से बनाया, इसके कदोकामत और जसामत और शक्ल व सूरत और आज़ा की तूल व अर्ज और जोड़ बंद और आंख नाक कान वगैरह की तख्लीक में ऐसा अंदाजा कायम फरमाया कि जरा इसके खिलाफ हो जाए तो इंसान की सूरत बिगड़ जाए और कामकाज मुसीबत बन जाए। इस टॉपिक को हम पिछली सूरतों में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आगे चलें। फिर वही कदरा का लफ्ज़ ये भी पहले आ चुका है, तो लफ्ज़ कदरहू से यहाँ ये भी मुराद हो सकती है कि इंसान जिस वक्त बतने मादर में यानी अपनी माँ के बतन में पेट में ज़ेर तख़लीक़ होता है, उस वक्त अल्लाह ताला उसकी चार चीज़ों की मिकदार लिख देते हैं। वो ये कि वो क्या क्या और कैसे कैसे अमल करेगा, उसकी उम्र कितनी होगी, उसको रिस्क कितना मिलेगा, और वो अंजाम कार सईद व नेक बख्त होगा या शकी बदबख्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पर किसी आप में से साथी ने एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया था एक मजलिस के बाद, जो हमारी थोड़ी देर के लिए निजी मजलिस सी होती है, तो अभी उसका वक्त नहीं है, इस वजह से उसको अभी मैं शुरू नहीं कर रहा। अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं भी डिस्कस कर, या आप अगर आप में से कोई पूछ ले तो फिर वो अच्छा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तुम सबीला यसरा, यानी हफ ताला ने अपनी हिकमत बालगा से इंसान की तख्लीक बतने मादर की तीन अंधेरों यानी तीन अंधेरियों और ऐसे महफूज मकाम में फरमाए कि जिसके पेट में सब कुछ हो रहा है उसको भी इस तख्लीक की तफसीली कुछ खबर नहीं होती। राइट, फिर ये जिंदा तमाम अज़ा और जवारे से मुकम्मल इंसान जिस जगह में बना है वहां से उस दुनिया में आने का रास्ता भी बावजूद तंग होने के हफ ताला की कुदरत कामिला ही ने आसान फरमा दिया कि 4-5 पौंड का वजनी जिस्म सही सालम बरामद हो जाता है और माँ के वजूद को भी इससे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचता। यानी इतना तो नेचुरल डिलीवरी में तो आपको पता है, एक दिन के बाद जो है वो घर आ जाते हैं। ठीक है, वो तो सी सेक्शन के बाद जो है वो 5 दिन के लिए अस्पताल में रखते हैं, जो कि इंसान का काम होता है सी सेक्शन। ठीक है, अल्लाह ताला के काम है तो एक दिन के अंदर घर वापस। फतबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन थुम्मा अमातहु फअकबरहु, तख्लीक इंसानी की इब्तिदा बयान करने के बाद उसकी इंतहा मौत और कब्र पर है, इसका जिक्र बसलसलाए इनामात फरमाया है। इसे मालूम हुआ यानी ये जो मौत और कब्र है ना, इसको बतौर इनाम के अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया। ठीक है, इससे नहीं नेमत है, लेकिन कौन से इंसान की जिसके लिए आगे नेमतें वेट कर रही हैं, काफिर के लिए कोई थोड़ी नेमत है। तो लेकिन इवन काफिर के लिए अल्लाह ताला ने अच्छा इंतजाम किया हुआ है जिस्मानी एतबार से कम अज कम। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुहफतुल मोमिन अल्मौत, के मोमिन का तोहफा मौत है और इसमें मजमूए आलम के एतबार से बड़ी हिकमतें हैं। और अकबरहू के मानी फिर उसको कब्र में दाखिल किया, ये भी एक नाम है कि इंसान को हक ताला ने आम जानवरों की तरह नहीं रखा कि मर गया तो वहीं ज़मीन पर सड़ता और फूलता फटता है, बल्कि उसका इकराम ये किया गया कि उसको नहला कर नए और पाक साफ कपड़ों में मलबूस करके एहतराम के साथ कब्र में दफन कर दिया जाता है। ठीक है, अब इतने जानवर मरते हैं, ठीक है, बल्कि बाकायदा किसी ने लिखा भी था और इस आजिज का मुशाहिदा भी ऐसे ही रहा है कि जानवर तो हमारे चारों तरफ कितने कुत्ते बिल्लियां, कुत्ते तो पाकिस्तान में बहुत नजर आते हैं, यहाँ बिल्लियां बहुत नजर आती हैं। ठीक है, और उसके अलावा कबूतरें और फाख्ताएं और उसके अलावा ना जाने क्या क्या कीड़े मकोड़े, पता नहीं कितने हजारों लाखों करोड़ों अरबों। ठीक है, तो अब ये क्या सारी जिंदगी ये हमेशा जिंदा रहते हैं, ये मरते नहीं है क्या कभी? ठीक है, बिल्लियां नहीं मरती, तो मरती हैं तो किधर जाती हैं? इनको कोई दफन करता है? बिल्लियां एक दूसरे को दफन करती हैं? नहीं करती है ना, तो कहाँ जाती हैं वे सारी की सारियाँ? ठीक है, सारी बिल्लियां और सारे चूहे और सारे कॉकरोच, ठीक है, सारे के सारे जो है वो बिलों में मरते हैं। बिल्लियों के तो बिल नहीं होते। तो इसके लिए बाकायदा तहकीक लिखी है किताबों के अंदर कि अल्लाह ताला ना इनके मरने से पहले इनको बता देते हैं कि ये मरने वाले हैं। ठीक है ना, तो अब ये उस वक्त मरने से ठीक थोड़ी देर पहले ये ऐसे मुकाम पर चले जाते हैं कि जहां इनको कोई नहीं देख सकता। ठीक है, सारे परिंदे, हत्ता के जब मेरे दिल में पहली बार ये ख्याल आया था, मैंने पढ़ा कहीं नहीं था उस वक्त तक, लेकिन ख्याल आया तो मैं सोच रहा था कहाँ मरते हैं कहाँ मरते हैं। तो एक दफा छत पे गया अपने घर की, तो छत के ऊपर ना कुछ घरों के दरमियान यहाँ पर उन्होंने एक खाली ओपन जगह बनाई हुई होती है। ठीक है, शूट टाइप की चीज होती है, लेकिन वो शूट होता नहीं है, यानी कचरा फेंकने की जगह नहीं होती वो, बस एक उन्होंने अजीब वगरीब किस्म का यहाँ पे आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो मैंने झांक करके देखा उस ओपन जगह के ऊपर, जमीन तक वो ओपन होती है, तो देखा कि वहां पर कई कबूतरें जो है ना उनके यानी वो लाशें पड़ी हुई थी। ठीक है, और किसी की देख के लग रहा था कि लगता है ये 10-15 दिन पहले की मरी हुई है, किसी को देख के लग रहा था शायद उसको महीनों गुजर चुके हैं, किसी को लग रहा था शायद ये 1 साल से मरी हुई पड़ी है, यानी उस लेवल ऑफ डिकम्पोजिशन में था। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये बात पढ़ी किताब के अंदर, तो पता चला कि वाकई दूसरे उलमा ने इस तरह से लिखा भी है कि वाकई ये मरने से पहले ऐसी जगह पे जाते हैं जहां इनको कोई नहीं देख सकता, बिकॉज वो जगह ऐसी है जहां पे कि हमारी बिल्डिंग का कोई शख्स जाके देखता नहीं है। ठीक है, तो इंसान के साथ ऐसा नहीं होता, انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاہے کافر کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ نے قبر کا سسٹم بنایا ہے کہ اس کے آپ باڈی کو ایسے ڈیکمپوز ہونے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے, نہ تو وہ خود جا کر کے کسی ایسی جگہ جا کے چھپ سکتا ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں لگتا جب تک ملک الموت آنا جائے, اس کو تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ مرنے والا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے لوائقین کی ذمہ داری بنا دی کہ اس کو قبر میں داخل کیا. تو یہ بھی ایک انعام ہے کہ انسان کو تعالیٰ نے عام جانوروں کی طرح نہیں رکھا کہ مر گیا تو وہیں زمین پر سڑتا اور پھولتا پھٹتا, بلکہ اس کو صاف کپڑوں میں نہلا دھلا کر کے, اچھے کپڑوں میں ملبوس کر کے احترام کے ساتھ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے. مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مردہ انسان کو دفن کرنا واجب ہے چاہے کافر کیوں نہ ہو. کافر کو آپ جلا نہیں سکتے کہ یہ تو ہندو ہے چلو اس کو جی جلا دو, نہیں. ٹھیک ہے, ہندو کو بھی نہیں جلا سکتے, کسی کو بھی نہیں جلا سکتے. ہندو جلاتے ہیں تو اب ان کو ہم روک نہیں سکتے نا, مجبوری تو یہ, ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں ان کو روک نہیں سکتے غلط کام کرنے سے, لیکن وہ ہماری دسترس سے باہر ہے اس وجہ سے, ورنہ اگر ہمارے ہاتھ میں آئے تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے, دفنانا پڑے گا. اور مسلمان کے ساتھ تو پھر یعنی بالاولا اس کو تو پھر نہلانا بھی ہوتا ہے اور شرعی تقاضے سارے پورے کرنے ہوتے ہیں. میرے خیال میں یہاں روک دیتے ہیں, تھوڑا سا اور ٹائم لگے گا, تو اگر کوئی سوال نہیں ہے تو کلاس ختم کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.